ओम शांति। हम सभी के बीच में बाबा की रतन राजयोगिनी आदरणीय डॉक्टर सविता बेन उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे आपका इस सभा के अंदर। बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। राजयोगिनी डॉक्टर सविता बेन, आपने ईश्वरी ज्ञान को राजस्थान कोटा से ईश्वरी ज्ञान को प्राप्त की, जिसको 35 इयर्स हुए हैं। 25 इयर्स से आपने अपनी जीवन ईश्वरी सेवा में समर्पित की हुई है। पिछले 10 साल माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर के नाते आपने सेवाएं दी हैं, इसलिए आपके पास डबल डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर, जिस्मानी डॉक्टर, ये दोनों टाइटल आपके पास है। और आपका साथ ही साथ में ये भी परम सौभाग्य रहा है कि आप इस संस्था की मुख्य प्रशासिका, हम सभी की प्यारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जिनके स्वास्थ्य जब ठीक नहीं था तो उन दिनों में आपने बहुत अच्छी दादी जी की सेवा करके दादी जी की दुआओं का भाग्य भी आपने प्राप्त किया हुआ है। 19 जितनी विंग है जिसमें आप महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने विदेश में भी जाकर के सेवाएं दी हैं। ईश्वरीय संदेश देकर के अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की हुई हैं। यहाँ पर भी अनेक बेहद यज्ञ के अंदर जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी आप अपना प्रवचन दिन प्रतिदिन देती रहती हैं। तो ऐसी बाबा की अमूल्य रतन राजयोगिनी डॉक्टर सविता बेन के स्वमुख से हम ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। आज का आपका टॉपिक है सफलता की चाबी दृढ़ता। राजयोगिनी डॉक्टर सविता बेन।
ओम शांति। एक बार फिर से बोलिए ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जब ज्ञान में चलते हैं तो शुरू शुरू में बहुत नशा होता है, खुशी होती है। ज्ञान सुनते हैं उसकी खुशी होती है, वो अलग बात है, लेकिन वो ज्ञान जीवन में धारण हो उसके लिए दृढ़ता की जरूरत होती है। अगर दृढ़ता है तो फिर जो भी विघ्न आते हैं उनका हम सहज सामना कर लेते हैं, उन्हें पार कर लेते हैं और हमें सफलता मिलती है। लेकिन अगर कमजोरी होती है तो फिर अच्छा जरूर बनना चाहते हैं लेकिन शक्ति की कमी होने के कारण उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। कभी आप सुन रहे थे तीव्र पुरुषार्थ के बारे में, तो यदि तीव्र पुरुषार्थ भी करना है तो भी दृढ़ता चाहिए। तो जो भी धारणाएं बाबा ने हमें बताई हैं, सबसे पहली धारणा खान पान की धारणा हमें जीवन में धारण करनी होती है। बाबा ने हमें उसका महत्व समझाया, सात्विक भोजन क्यों खाना है, जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगर हम अपवित्र वाइब्रेशंस वाला खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही हम उस बात के महत्व को समझते हैं, हम उस दिन से ही धारण करते हैं। फिर चाहे पहले हमारा खान पान कैसा भी रहा हो, हम तामसिक भोजन करते रहे हों, लहसुन प्याज खाते थे या जहां भी बाहर होटल में खाते थे, रेस्टोरेंट में खाते थे, पार्टी में खाते थे, सब कुछ लौकिक दुनिया में जैसे लोग खाते थे ऐसे हम भी खाते थे। लेकिन जैसे ही ये महत्व समझ में आया भोजन का, हम तुरंत उसको परिवर्तन करते हैं। फिर चाहे हमें सुनना पड़ता है, आप रिश्तेदारों में जाएंगे तो जरूर कुछ ग्लानी की बातें सुननी पड़ेंगी, कहीं शादी ब्याह में जाएंगे या पार्टी में जाएंगे, क्योंकि जाना ही पड़ता है, समाज में रहते हैं तो ये परिस्थितियां तो सामने आती हैं। लेकिन सदा का व्रत ले लिया, पूरे जीवन का व्रत ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सात्विक भोजन ही करना है, बाबा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन ही करना है, तो व्रत हम तोड़ते नहीं हैं। फिर कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना सामने हो, भले आकर्षण हो खाने की, लेकिन व्रत तोड़ेंगे। लौकिक दुनिया में भी लोग व्रत उपवास रखते हैं, तो पूरे दिन का जो उपवास रखा, फिर कितने भी अच्छे खाने के पदार्थ उनके सामने आ जाएं, व्रत तोड़ते हैं क्या वो? उनको पता है कि सारे दिन का व्रत रखने से उनको क्या प्राप्ति होने वाली है, इसीलिए व्रत नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना अटल रहते हैं। तो वो एक दिन का व्रत होता है, लेकिन हमारा तो पूरे जीवन भर का खाने का वो व्रत है। तो इतनी दृढ़ता, आप सभी तो उस नियम का पालन कर रहे हैं, सभी हैं इतने पक्के, या सोचते हैं थोड़ा थोड़ा तो समाज को निभाना पड़ता है ना, कभी गए शादी में चलो एक बार खा लेते हैं बाबा की याद में, आगे से फिर नहीं खाएंगे। कभी कभी बाबा कहता है चलो दृष्टि दे के खा लो, थोड़े समय योग की दृष्टि दे देते हैं इस अन्न को, फिर हम खा लेते हैं। माताएं क्या कहेंगे, ऐसा करते हैं कभी कभी? कोई कोई हाँ कर रहे हैं, नहीं करते हैं ना। जो बिल्कुल कुछ भी हो जाए, कैसा भी उत्सव हो अवसर हो, लेकिन अपने खान पान के नियम में बिल्कुल पक्के रहते हैं, वो हाथ उठाएं। 50-50 हैं, तो इसका मतलब कई अभी भी उसमें कच्चे हैं। तो अगर ऐसा है, कहते हैं हमने उस समाज की मर्यादाओं को या आत्माओं को निभाया, ऐसे कहेंगे ना, आप गए शादी में आपने निभाने के लिए खा लिया, तो आत्माओं को निभाया जो कभी भी धोखा दे सकती हैं। लेकिन यहाँ भगवान को हमने नहीं निभाया जो हमें सदा काल की प्राप्ति कराने वाला है, जो हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है, उसको हमने उस प्राप्ति को हमने जैसे गंवा दिया, तो हम उसको सामने रखें कि हम क्या गंवा रहे हैं, निभा रहे हैं या गंवा रहे हैं। तो वो अल्पकाल की लोकलाज को निभाने के पीछे हम अपनी सदाकाल की प्राप्ति को नहीं खोएं। फिर दूसरी बात, बाबा ने हमें धारणा दी पवित्रता की। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। हमने पवित्रता के महत्व को समझा कि पवित्रता धारण करेंगे तो ही स्वर्ग के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो ही भगवान के दिल तख्त नशीन होंगे, बाबा के प्यार का अनुभव तभी होगा, बाबा का प्यार हमें अनुभव तभी होगा जब हम मन वचन कर्म से पवित्र होंगे। तो हम उस ब्रह्मचर्य की धारणा को, पवित्रता की धारणा को अपनाते हैं, फिर चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना आए। शुरू से ही यज्ञ में ये रहा है। हम देखते हैं कल की मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने क्यों गालियां खाई था ना, कि ब्रह्मा बाबा तो हीरे जवाहरात का व्यापारी था, वो तो इतना सम्माननीय था, उसको गाली खाने की क्या जरूरत थी? कोई हीरे जवाहरात के व्यापारी को गाली खाने की जरूरत पड़ती है क्या? लेकिन जब शिव बाबा ने ये ऑर्डिनेंस निकाला तो सारा समाज विरोध में खड़ा हो गया, और बाबा को तो क्या, बच्चों को भी, जो भी साथी भी थे सबको गाली खानी पड़ी। तो बाबा ने कहा कि कलंगीधर बनना है, विश्व की बादशाही मिलना कोई छोटी बात है क्या? तो सभी को जैसे वो कलंक लगे। लेकिन चाहे जो भी हुआ, कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, हम सुनते हैं दादियों से, बच्चे भी छोड़कर आए, अपने पति भी छोड़कर आए, अपना परिवार, अपने सब जो भौतिक सुख थे सब छोड़कर के बाबा में इतना निश्चय, इतना प्यार कि वो विघ्न जैसे विघ्न कभी लगे ही नहीं। और ऐसे ही चाहे माना जैसे यज्ञ की स्थापना हुई तो हम भी आज बाबा के ज्ञान में आते हैं। तो मानो किसी का पति ज्ञान में नहीं चलता है तो उन माताओं के लिए वो विघ्न का सामना करना ही पड़ता है, फिर चाहे उसको कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन वो पवित्रता का महत्व जीवन में है तो वो करते हैं। फिर चाहे योग बल से काम करते हैं, चाहे अपनी धारणाओं के बल से जीतते हैं, किसी तरह से उनको भी ज्ञान में लाने की कोशिश करते, जो भी विधि अपनाते हैं लेकिन अपनी धारणा में मजबूत रहते हैं, वो दृढ़ संकल्प उनको पक्का रखता है। और ऐसे ही अगर युगल ज्ञान में नहीं चलती है, भाई ज्ञान में आ गए तो वो भी फिर किसी विधि से अपनी पवित्रता को कायम रखते हैं। कुमारी जीवन में अगर ज्ञान मिल जाता है, माता पिता चाहते हैं कि शादी करें, कुमार या कुमारी दोनों में से कोई भी हो, माता पिता ज्ञान में नहीं है और उनका दबाव रहता है कि शादी करें, तो वो भी किसी युक्ति से अपने आप को बचाते हैं, चाहे भले फिर घर छोड़ना पड़े, बहनें सेंटर पर आकर रहने लगती हैं, उनके लिए तो बाबा ने बहुत अच्छा भाग्य दिया है, संगम युग पर टीचर बनने का भाग्य मिलता है। हमारा अपने जीवन का भी अनुभव है कि यही स्थिति हमारे साथ थी कि जब हम ज्ञान में चले तब हमारे माता पिता ज्ञान में नहीं थे, और जब हमने उनको कहा कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत नाराज हुए वो, लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ था, उनको हमारे आगे झुकना पड़ा और आज हम उस दृढ़ता के बल से बाबा की सेवा कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये मिला, थोड़ा समय जरूर हमें सहन करना पड़ा, धीरज रखना पड़ा, लेकिन आज वो भी ज्ञान में है। तो ये हमारी अपनी दृढ़ता की शक्ति होती है। जो भी धारणाएं बाबा ने हमें दी हैं, अगर हमने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद मिलती है। अभी हम गीत भी सुन रहे थे ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। कोई भी विघ्न आता है, अगर हम ये समझते हैं कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है ना, और ये किसकी आज्ञा है, किसकी श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो यदि हमने सिर्फ हिम्मत का वो संकल्प भी किया तो कैसे बाबा हमें सहज उससे पार करता है, कैसे वो हमें शक्ति मिल जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कोई इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर गए, और वो हमें आगे बढ़ाते हैं। वो जैसे हमारे पेपर होते हैं और उन पेपर में जैसे हम पास होते जाते हैं हमारी क्लास आगे बढ़ती जाती है, ये शुरू के पेपर हैं। लेकिन पवित्रता बाबा यहीं तक खत्म नहीं करता है। बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति भी पवित्र होनी चाहिए। आज की मुरली में काफी बाबा ने इस बात को विस्तार से कहा कि हम अगर किसी को देहिक दृष्टि से देखते हैं, मानो अगर हम देह के आकर्षण में आते हैं, दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, तो ये भी पवित्रता नहीं है। नाम रूप की बीमारी जो बाबा ने आज मुरली में कही, और यहां तक कि बाबा ने कहा कि अगर भाई भाई में भी नाम रूप का प्रभाव है, बहुत आपस में प्यार है, आशिक पाशुक जैसे हैं, या बहनों में भी दो बहनें ही हैं, उनमें ही आपस में बहुत प्यार है, तो श्रीमद के अनुसार ये भी गलत है। यहां तक कि फैमिलियरिटी में रहना ये भी गलत है, एक फैमिली फीलिंग है मेरी उनके साथ, ये भी गलत है। श्रीमद है न्यारा और प्यारा रहना, बाबा का प्यारा होकर के न्यारा बनकर के फिर संबंध और संपर्क को निभाना, ये ज्ञानी और योगी का जीवन होता है। तो ये हमें चेकिंग रखनी है कि कहीं आज तक भी मेरी दृष्टि वृत्ति किसी से प्रभावित तो नहीं होती है। आज का पुरुषार्थ का दिन भी है ना, आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है, याद है सभी को, सभी के मस्तक में सितारा चमक रहा है, तो भाई बहन भी नहीं देखना है, लेकिन आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं, इस तरह से हमें देखना है। तो वो पवित्रता की ऊंची स्टेज है कि जहां दृष्टि वृत्ति भी प्रभावित नहीं होती किसी देहधारी से। अगर मेरे मन पर किसी का प्रभाव है तो सिर्फ बाबा का प्रभाव है, और अगर किसी के गुण हैं, विशेषताएं हैं, तो वो भी बाबा की देन है। हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण और विशेषताएं आ सकती हैं। हम उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। फिर और आगे चलते हैं तो बाबा कहता है कोई भी विकार, केवल काम विकार नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा भी विकार आता है तो वो भी अपवित्रता है। हाँ, मानो गुस्सा आता है तो कई बार काम विकार पर तो विजय पा लेते हैं, उस पर बहुत अटेंशन देते हैं, दृढ़ता से सभी परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं होती है। ब्राह्मण बनने के बाद भी ये जो कमी है ब्राह्मणों की, ये बहुत मुश्किल से जाती है, इसमें कहीं ना कहीं अलबेले बन जाते हैं, क्योंकि हम एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को, एक्सक्यूजेस माने बहानेबाजी। बच्चे हैं ना, आप मानते नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, माताएं क्या करेंगे, गुस्सा तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और नहीं मानेंगे, ज्यादा गलती करेंगे तो शायद एक आधा थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, सही है। बाबा की श्रीमत है, ऐसे सिखाना है बच्चों को। भाई कहते हैं लोग काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, गुस्सा तो करना पड़ेगा, काम करवाना पड़ता है तो गुस्सा आ ही जाता है, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कहा, कोई ना कोई कारण तो जरूर बनेगा। हाँ, इस दुनिया में कोई कारण ना बने, ये तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान वातावरण है, कोई ना कोई परिस्थिति जरूर उत्पन्न होगी जो हमें गुस्सा पैदा कर सकती है, लेकिन हम कौन हैं? हमें याद रखना है हम प्रेम के सागर के बच्चे, मास्टर प्यार के सागर हैं, हम शांति के सागर के बच्चे, मास्टर शांति के सागर हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति है, तो क्या किसी की इतनी सी परिस्थिति पैदा करने से मेरा वो प्यार खत्म हो गया? मुझे प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति ही यूज करनी है, वो बच्चे कैसा भी कर रहे हैं फिर भी मुझे प्यार से ही समझाना है। हो सकता है आप प्यार से समझाते हैं वो नहीं मानते, ऐसा होता है कि हो सकता है वो आपके प्यार को इतना ना समझे, आपको धीरज रखना पड़ सकता है, लेकिन मुझे अपने प्रेम की शक्ति को नहीं छोड़ना है। फिर कई समझते हैं हम सहन कर लेंगे ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, हम सहन कर लेंगे तो मेरी ही गलती मानी जाएगी, मेरे को कमजोर समझेंगे, मेरा ही नाम खराब होगा, तो मैं क्यों सहन करूं। हम भी तो बता सकते हैं ना सही क्या है, यही तो गलत कर रहे हैं, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो बाबा ने यहां भी हमें कहा कि हम सहन करते हैं मानो, तो किसकी आज्ञा से करते हैं? ये भगवान की आज्ञा है कि हमें सहन शक्ति को धारण करना है, और यदि हमने सहन कर लिया तो मैं उस परिस्थिति में पास हो गई, मेरे मार्क्स जमा हो गए। भगवान की नजरों में भले ही दूसरों की नजरों में मैं हार गई, लेकिन भगवान के दिल में मैं विजयी हो गई। तो अगर ये स्मृति हमको रहती है तो ये छोटी छोटी बातें जो हर दिन हमारे सामने किसी ना किसी रूप में होती हैं, हमको विचलित नहीं करती और हम क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। पर कई बार कड़ा संस्कार होता है, अपने गुस्से को ही जीतना बड़ा मुश्किल लगता है, चाहते तो नहीं है लेकिन गुस्सा आ जाता है, बोलना तो नहीं चाहते हैं लेकिन मुख से निकल जाते हैं शब्द, हो जाता है ना कई बार ऐसा कि चाहते हैं फिर भी कंट्रोल नहीं है। तो फिर हम उसको मेहनत करें थोड़ा, जैसे मानो हम किसी दीवार को तोड़ रहे हैं तो वो दो चार छह हथौड़े में दीवार नहीं टूटी तो हम छोड़ नहीं देते उसको, क्योंकि हमें तोड़ना ही है तो हम हथौड़े लगाते जाएंगे, और मानो 50 हथौड़े लगाने के बाद वो दीवार टूटी तो आखिर टूट गई ना, भले थोड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन टूट गई। तो हो सकता है मैंने आज सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, और जिस दिन आप संकल्प करेंगे ना, दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज मुझे नहीं करना है, मानो मैंने आज के लिए वो व्रत ले लिया, उसी दिन इतनी बातें आएंगी कि आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। हाँ, गुस्सा कर गए, मानो सोचा फिर भी गुस्सा कर गए, तो मैं एक बार फेल हो गई उसमें मुझे निराश नहीं होना है। इसीलिए बाबा हमें कहता है रोज चार्ट चेक करो, रात को रोज चेक करो कि आज का दिन मेरे से क्या क्या भूल हुई, श्रीमद प्रमाण क्या क्या नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर दुगनी शक्ति से उस पर पुरुषार्थ करो। तो जब हम बार बार अटेंशन देंगे, चेकिंग करेंगे, तो हम चेंज भी करते जाएंगे, और हो सकता है कि मुझे उस संस्कार पर काम करने में एक महीना लग जाए, दो महीना लग जाए, हो सकता है 6 महीना भी लग जाए, लेकिन आप देखेंगे कि आपका क्रोध कम होता जा रहा है और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वही बात अब आपको गुस्सा पैदा नहीं कर रही जो पहले आपको गुस्सा पैदा करती थी। तो कड़े संस्कारों को हम इस तरह से मिटाएं कि हम उसके पीछे पड़ जाएं कि अगर मैंने ये अपनी कमजोरी ले ली है कि इस कमजोरी को मुझे दूर करना ही है, फिर वो चाहे कोई भी है, तो फिर जब तक वो कमजोरी मिट नहीं गई तब तक पूरी अटेंशन और चेकिंग उसके ऊपर हमारी रहे, जब तक कि पूरी तरह चेंज नहीं हो जाता। ऐसे ही व्यर्थ संकल्प के बारे में पिछले सीजन में बाबा ने कहा था कि व्यर्थ संकल्प समाप्त करने हैं और ज्वालामुखी योग करना है। तो व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है, बाबा कहता है वो सूक्ष्म रूप है उसका। तो आप क्या समझते हैं, अगर बाबा आज हमसे रिजल्ट पूछे कि पिछले सीजन की होमवर्क का रिजल्ट क्या है, तो क्या कहेंगे, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए, क्या कहेंगे? जो समझते हैं हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए वो हाथ उठाएं। लगभग नहीं के बराबर है, कोई एक हाथ उठा रहे हैं। तो हमें पता है कि व्यर्थ संकल्प समाप्त करना इतना आसान नहीं है। सारा दिन में कितनी छोटी छोटी बातों में हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, देखते हैं ना दूसरों को, और जब दूसरों को देखते हैं तो अच्छी तरह से तुलना कर लेते हैं, अरे इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं अभी तक इनमें चेंज नहीं आया है, हम तो एक ही साल हुआ है हमें तो ज्ञान में चलते हुए, ये इतनी गलतियां करते हैं, हाँ ये अभी भी गुस्सा करते हैं, ये अभी भी ऐसा बोलते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। तो अगर हमने दूसरों को देखा, बाबा ने छुट्टी दी है दूसरों को देखने की, फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर ऐसा कहा है, क्या कहा है, फॉलो फादर एंड मदर। हमें कभी भी अपने साथियों को नहीं देखना है क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं और हर एक नंबरवार है, वो बाबा ने हमें समझाया है। और कितने साल से कोई ज्ञान में है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी धारणा कितनी है उससे फर्क पड़ता है। तो मुझे उसको नहीं देखना है, मुझे अपने आप को बदलना है। पर चिंतन नहीं करना है, स्व चिंतन करना है। ज्यादा व्यर्थ संकल्प दूसरों के होते हैं, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, दूसरों के क्यों क्या में हम बहुत जाते हैं। या फिर किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने गुस्सा तो नहीं किया लेकिन मुझे फीलिंग आ गई। हम समझते हैं ना, गुस्सा तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो चलो गुस्सा तो नहीं किया मैंने, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चले उसके बाद। इसने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कई तरह की बातें सोचते हैं। फिर उनको उसी तरह से व्यवहार बोल के नहीं करते हैं, है ना, हाव भाव से करते हैं कि हम आपसे नाराज हैं। एक्सप्रेशन जो होते हैं ना हमारे, वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं, उससे फिर हम दूसरों को वो दिखाते हैं। तो मन में क्या चल रहा है वो दूसरे तक पहुंचता है ना, वो नाराजगी का जो वाइब्रेशन है वो दूसरी आत्मा तक भी फिर पहुंचता है। तो व्यर्थ संकल्प पर विजय प्राप्त करना माना, बाबा ने उसकी विधि हमें बताई है कि हर बात जो भी हो रही है उसे साक्षी होकर के देखो। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, मुझे भी अपना पार्ट बजाना है, दूसरों के पार्ट को मुझे नहीं देखना है। मेरा पार्ट मैं बेस्ट कैसे प्ले करूं वो मुझे करना है। और दूसरा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है उसमें कल्याण का बिंदु लगाओ। हर बात में कल्याण है। किसी ने कुछ कहा, कोई मेरा हिसाब किताब होगा, कभी हमने उसको कहा होगा, आज वो मुझे कह रहे हैं, तो चलो वो पूरा हो गया, हमारा कर्ज चुक्त हो गया। तो ज्ञान को यूज करके बिंदु लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, उस बात के चिंतन में ज्यादा नहीं जाना है। जो हो गया सो हो गया। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, नथिंग न्यू। जो आज हम पास कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, अनेकों बार मैंने इसको पास किया है। तो जब कोई बात बहुत बार की जाती है तो उसे करना फिर सहज होता है ना। किसी भी बात को हम पहली बार करते हैं तो हमें कठिन लगती है, हमें लगता है कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वही बात मैंने 10 बार कर ली तो क्या लगता है, अरे ये तो इजी है, मैंने कितनी बार तो किया है इसको, अब करना थोड़ी मुश्किल है। तो जैसे ही ये संकल्प या हमें ये स्मृति आती है कि ये मैं पहली बार नहीं पास कर रही हूं, तो मैंने कितनी बार पास किया है, और कितनी बार पास किया है माना, हम विजयी हो जाते हैं, सहज हो जाता है हमारे लिए। तो बाबा ऐसे भी कहता है, पास 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 ना, पास करना है, पास रहना है और पास होना है। तो बाबा के पास रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो पास हम हो ही जाएंगे। फिर कई बार हम ये देखते हैं कि जो दूसरी छोटी छोटी धारणाएं हैं, ये तो सूक्ष्म है लेकिन छोटी छोटी धारणाओं में अलबेले हो जाते हैं। रोज अमृत वेला करना है, लेकिन अमृत वेले के समय ही माया चक्कर लगाती है। उतना दृढ़ता से पावरफुल जो अमृत वेला होना चाहिए वो अमृत वेला नहीं हो पाता। रोज सोचते हैं कि आज अमृत वेले अच्छी तरह ऐसे बैठेंगे, फिर उठ के बैठते भी हैं, चलो या तो उठते ही नहीं हैं, और अगर उठ के बैठते भी हैं तो आधा समय नींद में, आधा समय परमधाम में। जो समझते हैं हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है, हम अमृत वेला मिस नहीं करते हैं, वो हाथ उठाएं। देखो इसमें भी काफी ऐसे हैं भाई बहने दोनों ही कि जिनका अमृत वेला अभी तक भी पक्का नहीं है। तो यहां भी हमें दृढ़ता की जरूरत है। और पहले हमें यह समझना है कि अमृत वेले का ब्राह्मण जीवन में कितना महत्व है। जब हमें उस बात का महत्व समझ में आता है तब फिर हम उसको पालन करने में उतनी दृढ़ता दिखाते हैं। तो हमें पता है कि अमृत वेला बाबा का बच्चों के लिए विशेष समय है। अमृत वेला बाबा जैसे भोला भंडारी के रूप में होते हैं और वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, हमें सर्व प्राप्तियां सहज होती हैं, सारे वरदान हम प्राप्त करते हैं, तो हम और आत्माओं के लिए भी उस समय, क्योंकि उस समय प्रकृति भी शांत होती है, सतो प्रधान होती है, हमारा मन भी सात्विक स्थिति में होता है, तो हम सहज ही पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मनसा सेवा भी कर सकते हैं, तो हम दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं उस समय में। और अगर हमारी कोई कमजोरी है मानो और हम उसको दूर करना चाहते हैं, तो बाबा से विशेष शक्ति भी हमें अमृत वेले मिलती है कि अमृत वेले ही हम बाबा से विजय का तिलक अपने मस्तक पर लें, तो आप देखेंगे कि सारा दिन उस शक्ति से आप सहज ही विजयी बनते हैं। तो उस महत्व को याद रखेंगे तो जब सुबह उठेंगे तो पावरफुल रीति से बैठेंगे कि बाबा से मुझे सर्व वरदान, सर्व शक्तियां, पूरी सकाश लेनी है। और बाबा से जो सीधा कनेक्शन हमें अनुभव होता है या परम धाम का भी जो सहज अनुभव होता है, वो अमृत वेले विशेष होता है। फिर यहां आते हैं, हम क्लासेस सुनते हैं, हमें अब रियलाइजेशन होता है और हम सोचते हैं कि जरूर हम परिवर्तन करके जाएंगे। जब जाते हैं यहां से, 3-4 दिन बहुत नशा होता है, वो बातें याद भी रहती हैं, हम करते भी हैं, धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति में बिजी होने लगते हैं। यहां रहते हैं तो प्रवृत्ति है ही नहीं, सब बातों से फ्री हैं, भोजन भी बना बनाया मिलता है। हाँ, माताओं को तो वो भी सोचने की जरूरत नहीं कि क्या बनाना है। तो बाबा के घर में हमें लगता है कि हम मूर्ति कला में आ गए, बहुत तीव्र पुरुषार्थी स्थिति का अनुभव होता है। और हम चाहते भी हैं कि यही हमारी स्थिति जब हम वापस जाएं अपने स्थानों पर वो बनी रहे। लेकिन फिर ये कि जैसे ही हम अपने कारोबार में चले जाते हैं, धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं और वो जो दृढ़ संकल्प हमने किया उसमें फिर अलबेले होने लगते हैं और पता चलता है कि फिर हम वैसे के वैसे ही ढीले रूप में पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले रोज मूली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी स्थिति का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके लिए बाबा हमें कहते हैं, बीच बीच में बाबा हमें होमवर्क देते हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि रोज जब भी समय मिले तो रूहानी ड्रिल करो, अशरीरी स्थिति का अभ्यास बीच बीच में जरूर करते रहो। तो जब वो कनेक्शन होता है हमारा, जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, बाबा को एक मिनट भी बीच में हमने याद कर लिया तो वो शक्तियां हमें मिल जाती हैं और फिर हमारे लिए सब धारणाओं को बनाए रखना सहज हो जाता है। और ऐसे ही एक बार बाबा ने कहा था अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज करना है। 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? एक तो अनादि आत्मा, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण पवित्र स्वरूप परम धाम में, फिर आदि देवी देवता स्वरूप, फिर द्वापर में पूज्य स्वरूप, देवी देवताओं के रूप में जो पूजा होती है, और फिर अभी वर्तमान ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप। तो जब हम ये स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के अपने 5ों स्वरूप को स्मृति में लाते हैं तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। तो उस ऊंची स्थिति का हम अनुभव करते हैं कि जब हम देवी देवता थे तो हम कितने श्रेष्ठ थे और आज भी हम ब्राह्मण बने हैं और फिर फरिश्ता बनेंगे तो कितने श्रेष्ठ होंगे। तो इन बातों के अभ्यास में भी बीच बीच में हम अटेंशन दें और दृढ़ता पूर्वक हर दिन अगर इनका अभ्यास करें तो भी हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाने में मदद मिलेगी। तो जो भी धारणाएं हैं, अगर हमें लगता है कि अभी भी हमारी उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो हम आज से ही बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प करें कि उसके महत्व को समझ करके उसको दृढ़ता पूर्वक धारण करेंगे और बाप समान जरूर बनकर दिखाएंगे। ओम शांति।